বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমান অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি ইসকন ফাউন্ডার আচার্য হিজ ডিভাইন গ্রেস শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমান ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি নামাচার্য শিল হরিদাস ঠাকুর কি প্রেম সে কহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবার্ষদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ গো গোপীনাথ শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন কি শ্রী বৃন্দাবন ধাম কি জয় শ্রী মথুরা ধাম কি জয় শ্রী জগন্নাথপুরী ধাম কি জয় শ্রী মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম কি জয় গঙ্গা মাই কি জয় যমুনা মাই কি জয় ভক্তি দেবী কি জয় তুলসী মহারানী কি জয় হরিনাম সংকীর্তন কি জয় সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয় All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Kuntale Shivate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine নির্বিশেষ শূন্যবাদী শ্রীল প্রভুপাদ কি ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ ভাগবতম সে হম পাঠ করেঙ্গে আজ তীসরি স্কন্ধ কা অষ্টম অধ্যায় ইয়ে তীসরি স্কন্ধ মে বিদুর কে সাথ মৈত্র ঋষি কে সাক্ষাৎকার কে বর্ণন হুয়া হ্যাঁ আপ লোক সব মহাভারত কি কাহানিয়া জানতে হ্যাঁ মহাভারত মে ইসকা বর্ণন হুয়া হ্যায় ভাগবত মে ভি বর্ণন হুয়া হ্যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জব অবশ্যম্ভাবী হো গয়া জব দুর্যোধন কিছু কি সলাহ সদ উপদেশ গ্রহণ করলে তৈয়ার না থা বহুত সারে মহাত্মাও নে বহুত সারে গুরুজনো নে দুর্যোধন কো সমঝানে কা বহুত সারে কোশিশ কিয়া থা তাকি ইয়ে যুদ্ধ না হো যুদ্ধ না করে পাণ্ডব কো আপনা যে ভাগ হ্যাঁ রাজ্য কা আধা ভাগ পাণ্ডব কো বাপস কর দে শান্তিপূর্ণ রূপ সে সব রহে অন্ত মে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গে থে দুর্যোধন কে সমঝানে কে কি দেখো ইয়ে লড়াই করকে ফায়দা কে হোগা ইয়ে পরিজনো কে সাথ সজনো কো সাথ লড়াই করকে আপনে अपने सजनों को हत्या करके ये लड़ाई करके ये राज्य सुख भोग करने में क्या प्रयोजन है शांतिपूर्ण रूप से तुम दोनों रहो दो पांडव और तुम लोग कौरव रहो अंत में कृष्ण ने बोला था आधा राज्य का भी जरूरत नहीं केवल पांच गांव पांच पांडवों को दे दो क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है वो है क्षत्रिय किसी का अपेक्षा नहीं करते हैं वो खुद इज द साउंड ऑल राइट और स्टू लाओ हरे कृष्ण अब ठीक है एको हो रहा है। हरे कृष्णा, अब ठीक है? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है स्वतंत्र रूप में रहने का, मतलब क्षत्रिय का जरूरत होता है कि या राज्य का, नहीं तो एक प्रदेश का, एक कम से कम एक गांव एक क्षत्रिय को होना चाहिए ताकि उसके ऊपर वो आधिपत्य कर सके। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, तो रक्षा करने के लिए राज का जरूरत होता है। तो भगवान बोला कौरवों को और दुर्योधन को कि उनको आधा राजभाग का भी जरूर देने का भी जरूरत नहीं, तुम केवल 5 गांव दे दो। तब दुर्योधन क्या बोला, अब सबको पता है, लड़ाई किए बिना मैं सूर्यचक्र मेदिनी भी नहीं दूंगा। सुई के मुंह में जितना जमीन लगता है उतना तक जमीन भी मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे लड़ाई अवश्यंभावी हो गए। विदुर तब धृतराष्ट्र को बहुत सारे सद उपदेश दिया था। विदुर ने बोला कि ये देखो, ये दुर्योधन तुम्हारा जो पुत्र है, ये कुल नाशक है, ये सारे वंश को नाश कर देने वाला है। तो जैसे एक परिवार को रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को हम उत्सर्ग कर सकते हैं, जैसे एक गांव को परिवर्त रक्षा करने के लिए एक परिवार को हम उत्सर्ग कर सकते हैं, एक राज को सुरक्षा करने के लिए एक गांव को भी हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, और अपने आप को रक्षा करने के लिए सारे संसार भी हम उत्सर्ग कर सकते हैं। यह है नीति शास्त्र का उपदेश। तो ये कुल रक्षा करने के लिए तुम एक पुत्र का त्याग दो, बल्कि धृतराष्ट्र नहीं सुना, परंतु दुर्योधन विदुर को बहुत अपमान किया, बहुत अपमान किया, बोला ये हमारा खाकर हमारे विरोधिता कर रहा है, खाता है मेरा और विरोधिता कर रहा है, और शत्रुओं को साथ ये संयोग ये हाथ मिला रहा है, तो इसको घर से निकाल दो, केवल उसका प्राण लेकर बस, और कुछ उसको लेने मत दो, केवल उसको प्राण लेकर उसको घर से निकाल दो, प्राण के साथ उसको घर से निकाल दो। तब विदुर निकल गए थे घर से। विदुर कौन है पता है सबको? हाँ, विदुर है धृतराष्ट्र और पांडु का भाई, व्यासदेव का पुत्र। व्यासदेव के द्वारा विचित्रवीर्य का पत्नी अंबिका का गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका का गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। तो जब सत्यवती विचित्रवीर्य को माता को ये अंबिका और अंबालिका का सास को पता चला कि एक पुत्र अंधा होगा और एक पुत्र पांडुर होगा, मतलब उसका शरीर का रंग ऐसे, ये क्या पांडुर का मतलब पेल का हिंदी क्या होता है, पीला, अच्छा ठीक है, कोई रंग नहीं है शरीर में, कुछ रंग नहीं रहेगा, ऐसे तो पीला भी एक रंग है, सादा भी है, लाल भी है, काला भी है, ये सब रंग होता है, बल्कि कोई रंग नहीं था। वो भय के बारे, जब बहुत डर होता है तो क्या होता है, बहुत डर के मारे ये हो जाता है शरीर का जो हाल होता है, वो हाल हुआ था अंबालिका का, तो इसके कारण उसका जो पुत्र हुआ उसका शरीर का रंग भी वैसा ही था। और डर के मारे व्यासदेव को देखकर अंबिका आंखें बंद कर लिया था, आंखें बंद कर ली थी। तो इस कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधा बन गया। तो सत्यवती ने बताया तो ठीक है, और अंबिका तुम व्यासदेव से और एक पुत्र ग्रहण करो। तो अंबिका और नहीं करना चाहा तो अपना एक दासी को भेज दिया। तो व्यासदेव के साथ उस दासी का संयोग के कारण विदुर का जन्म हुआ। बल्कि असल में आप जो कह रहे हैं, विदुर ने थे धर्मराज, जमराज का ही एक प्रकाश था विदुर। तो विदुर घर से निकल गया और और तीर्थ स्थान में भ्रमण करने लगे। तो करते करते इसके पश्चात उनके साथ उद्धव का मुलाकात हुआ। तो उद्धव से उनको खबर मिला, संवाद मिला कि युद्ध के कारण सारे कुरुवंश ध्वंस हो गया था, केवल 5 पांडव नहीं जिंदा था और बाकी। इसके पश्चात ये भी खबर मिला कि श्री कृष्ण इस धरती से अप्रकट हो चुके हैं, अपने धाम चले गए हैं। और उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज भी महाप्रस्थान में चले गए, मतलब घर छोड़ के उत्तर दिशा में चलने लगे हिमालय की ओर, जब तक ना शरीर गिर जाए, खाए बिना सोए बिना ऐसे पैदल चलते 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 ये शरीर त्याग दिए थे। पहले द्रौपदी, इसके पश्चात सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम को देहांत हो गया। तो ये खबर मिलने के बाद विदुर को बहुत कष्ट हुआ। तब उद्धव ने बताया कि भगवान ये निर्देश दिया अप्रकट होने के पहले कि मैत्रेय ऋषि के साथ विदुर का मुलाकात हो और मैत्रेय ऋषि ने विदुर को उपदेश देंगे। तो मैं ये जो है ये भागवतम का विदुर मैत्रेय संवाद के आख्यान में इसका वर्णन हुआ है। विदुर के साथ मैत्रेय मुनि के जो संलाप हुआ था, जो चर्चा हुआ था, विदुर ने प्रश्न किया था, बहुत सारे प्रश्न किए थे। उस प्रश्न के सवाल देते हुए मैत्रेय ऋषि ने जो बताया वो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही गंभीर अध्याय है, बहुत ही गहरा एक अध्याय है। इसमें भागवत का जो मूल वर्णन, अर्थात भागवत में 10 लक्षण होता है, महापुराण का 10 लक्षण होता है, मतलब ये जो महापुराण है इसमें सबसे पहले सृष्टि का वर्णन होता है, इस भौतिक जगत का सृष्टि कैसे हुआ। सारे वैदिक ग्रंथों में सृष्टि तत्व एक ही रूप में वर्णन हुआ है, अर्थात इस भौतिक जगत का सृष्टि कैसे हुआ। भौतिक जगत का सृष्टि हुआ जब महाविष्णु कारण समुद्र में लेटते हैं और उनको श्वास लेने के कारण जो बुदबुदा का उत्पत्ति होता है वो एक एक बुदबुदा है, एक एक ब्रह्मांड। इसके पश्चात महाविष्णु गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां अपना शरीर से पानी निकालकर वो ब्रह्मांड का आधा भाग पूरा कर लेते हैं, आधा भाग उसको भर देते हैं। तब अनंत शेष की सज्जा में उन्होंने लेट जाते हैं, मां गर्भोदोषाई विष्णु लेटते हैं। तब उनके नाभि कमल से एक कमल का उत्पत्ति होता है जिसमें ब्रह्मा जी आसीन रहते हैं, जिससे ब्रह्मा जी का प्रकाश होता है। तब ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत का, इस ब्रह्मांड का सृष्टि कार्य करते हैं, जिसे विसर्ग कहा जाता है। स्वर्ग है महाविष्णु से जब उत्पत्ति होकर ब्रह्मांड का सृजन होता है और गर्भोदोषाय के रूप में उनमें प्रवेश करते हैं, करके ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं। तब तक यह है स्वर्ग या प्राइमरी क्रिएशन, आदि सृष्टि। और इसके पश्चात जो होता है वो है सेकेंडरी क्रिएशन। तत्पश्चात जो सृष्टि है ब्रह्मा जी से जो होता है उसका वर्णन होता है भागवत महापुराण में। अर्थात जब जैसे ये मकान बना, मकान कौन बनाया? कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया। कॉन्ट्रैक्टर ने बनाने के पश्चात तब इसको आप पोजीशन मिल जाता है। पोजीशन मिल जाने के बाद क्या होता है, इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते हैं। जो मालिक है वो इंटीरियर डेकोरेटर लगा के ये सारे कुछ। तो ये सेकेंडरी क्रिएशन ऐसा है, प्राइमरी क्रिएशन है ब्रह्मांड का सृजन हुआ, इसके पश्चात ब्रह्मांड में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितने सारे जीव रहेंगे, कितने सारे लोक रहेगा, मतलब ग्रह नक्षत्र, ये जो है सब इसका सृष्टि ब्रह्मा जी ने करते हैं। तो ये है विसर्ग। दस ऐसे दस लक्षण है। इसके पश्चात है स्थानम, मतलब ये जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, ग्रह नक्षत्र जो है, हर ब्रह्मांड में 14 भुवन होता है। 14 भुवन, 7 है ऊपर का, 7 है नीचे का। ऊपर का जो है वो है भूर्लोक, जहां हम हैं पृथ्वी, ये है भूर्लोक बीच का। इसके ऊपर है भूवरलोक, इसके ऊपर है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक को भी ऊपर है महरलोक, उसके परे है जनलोक, उसके परे है तपोलोक और उसके परे है सत्यलोक। यह ऊपर का 7 लोक, 7 भुवन। और सबसे ऊपर जो है सत्यलोक वो है ब्रह्मा जी का स्थान। ब्रह्मा जी का स्थान है सत्यलोक में। इसके नीचे तपोलोक, जहां बहुत ऊंचे कोटि के ऋषियों ने वास करते हैं, जैसे चार कुमार, चतुष्वन, सनत सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो इसके परे जो है, इसके नीचे जो है जनलोक, वहां ऊंचे कोटि के ऋषि जो उनसे नीचे है, मतलब चार कुमार के नीचे और उनके पार्षदों के नीचे जो है वो लोग रहते हैं। जैसे आप जानते हैं सप्तर्षि मंडल, वशिष्ठ, अत्री, अंगिरा, क्रतु, पुलस्त, पुलह, ये लोग रहते हैं। और इसके नीचे है महरलोक, जहां भृगु आदि ऋषिगण रहते हैं। इसके नीचे है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, जहां इंद्र ने देवताओं के साथ विराज करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के अध्यक्षता करते हैं, जो भिन्न भिन्न विभाग जो है वो विभाग का परिचालना करते हैं। स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के नीचे है भूवरलोक, जहां देवताओं से नीचे जो है जक्ष रक्ष आदि रहते हैं। और इसके नीचे है भूवरलोक, जहां ये पृथ्वी है, जहां हम लोग रहते हैं, मृत्युलोक, मर्त्यलोक। और इसके नीचे सप्त पाताल है, सात पाताल, सुतल, बीतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, तल, अतल, सुतल, बीतल, महातल, रसातल, पाताल। तो ऐसे हर ब्रह्मांड में ये 14 भुवन है, चतुर्दश, इसलिए कहा जाता है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का आयतन में फर्क हो सकता है, जैसे ये हमारा जो हम जो ब्रह्मांड में वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा है ये, और सबसे और इससे बढ़कर जैसे देखिए महाविष्णु श्वास ले रहे हैं, जब श्वास लेते हैं तो मुंह से जो बुदबुदा निकलता है वो बड़ा होता है, और सांस वहां रोम रोम से भी लेते हैं, रोमकूप से भी लेते हैं, तो वहां से जो श्वास लेता है वो बहुत छोटा है। तो ऐसे हम केवल मुंह से नाक से ही नहीं, रोम रोम से भी हम श्वास लेते हैं, और उसके कारण अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अगणित ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। बल्कि हर ब्रह्मांड में ऐसे 14 भुवन है, इसका वर्णन पुराण में होता है। स्थानम, पोषणम, ये सृष्टि को भगवान कौन कैसे पालन कर रहे हैं इसका वर्णन, ये सृष्टि का पालन कौन कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री कर रहे हैं न कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, स्वर्ग का देवता बोल भी नहीं कर रहे, कौन कर रहे, भगवान कर रहे। तो ये जो वर्णन भगवान कैसे ये संसार को पालन पोषण कर रहे हैं, ये है पोषणम, पोषण। हम बोलते हैं ना पालन पोषण, तो ये जो विचार है पोषणम। और उतय, सृष्टि करने का जो प्रवृत्ति है उसका वर्णन। हर व्यक्ति सृष्टि का प्रेरणा हर व्यक्ति में है, हर जीव में है। उतय, इसका वर्णन श्रीमंत ऐसे पुराण में होता है। स्थानम, पोषणम, उतय, मन्वंतर। ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु का आविर्भाव होता है, मतलब ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आके राज करते हैं, मतलब केवल पृथ्वी का राज नहीं, स्वर्गलोक तक राज करते हैं। और मनु कौन है, मनु है हमारे पिता, मनु से मानव, हम लोग क्या है, मानव है, मनुष्य है। तो ये मनुष्य का उत्पत्ति मनु से हुआ, तो मनु हमारा पूर्वज है। तो ये मनु एक एक ऐसे 14 मनु है ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। तो उनका जो स्थिति का जो वर्णन, जैसे 14 मनु, 14 मनु का राज में 14 सारे ये बदलता है, जैसे फैक्ट्री में शिफ्ट होता है ना, तो एक शिफ्ट हुआ, सारे चला गया शिफ्ट होने के पश्चात, नया शिफ्ट आया, तो नया शिफ्ट में सब वैसे ही हैं, बल्कि दूसरे आदमी संभाल रहे हैं। एक फोरमैन है, है ना, फोरमैन के नीचे सुपरवाइज सुपरिंटेंडेंट है, मशीन मैन है, कूली है, ये सब शिफ्ट बदलते समय इसका भी परिवर्तन होता है। एक शिफ्ट जब जाता है सब चले जाते हैं, नया शिफ्ट आता है, वो शिफ्ट खत्म होने के पश्चात और एक शिफ्ट आता है, है ना। तो ऐसे ही मनु का राज में एक एक शिफ्ट बदलता है। उस शिफ्ट में कौन कौन है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, अग्नि है, सूर्य है, पवन है, ये सारे जो ये संभालते हैं इस ब्रह्मांड के कार्यकलाप, ये सारे आते हैं। जैसे अगले मन्वंतर में कौन इंद्र बनेगा, बलि महाराज इंद्र बनेंगे अगले मन्वंतर, और ये इंद्र का छुट्टी हो जाएगी। अब जो इंद्र है उसको शिफ्ट खत्म होगा और नया शिफ्ट में बलि महाराज आएंगे, और ये शिफ्ट का जो इंचार्ज है वो है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु है सूर्यदेव विवस्वान का पुत्र। वैवस्वत पहला मनु है ब्रह्मा जी का पुत्र, स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू, ब्रह्मा जी है स्वयंभू, तो स्वयंभू व स्वयंभू का पुत्र ये मनु। ऐसे ही है सरचीश मनु, ऐसे 14 मनु है। तो हम जो है ये जो स्थिति, जिस स्थिति में हम लोग हैं, इसका नाम है ये वैवस्वत मन्वंतर, और ये है सप्तम मन्वंतर, 14 में से 7 है ये। तो मन्वंतर ईशानु का था, इसके पश्चात भगवान का जो अवतार का जो वर्णन है उसे ईशानु का था कहा। मन्वंतर ईशानु का था, मुक्ति इस भौतिक जगत से, मुक्ति निरोध सारे स्थिति का अंत, और आश्रय सारे सब कुछ का जो परम आश्रय शिव परमेश्वर भगवान उनका वर्ण। कोई पुराण में 5 लक्षण होता है, कुछ पुराण में 6, 7, 8 ऐसा होता है, बल्कि महापुराण में ये 10 लक्षण होते हैं। जैसे भागवत है महापुराण, क्यों, क्योंकि इसमें इस 10 लक्षण है। कैसी सृष्टि, मूल आदि सृष्टि, आपेक्षिक सृष्टि, ग्रह नक्षत्र की वर्णन, पालन पोषण भगवान कैसे कर रहे हैं इसकी वर्णन, जीव में संतान संतति उत्पादन का जो प्रेरणा है उसका वर्णन, मनुओं का वर्णन, मन्वंतर का वर्णन, भगवान के अवतारों का वर्णन, मुक्ति के वर्णन, स्थिति के निरोध का वर्णन, और परम आश्रय रूप में परमेश्वर भगवान का वर्णन। तो विदुर ने मैत्रेय ऋषि को जो प्रश्न किए थे, उस प्रश्न के माध्यम ये 10 लक्षण का वर्णन हुआ मैत्रेय ऋषि के संवाद, मैत्रेय ऋषि के वर्णना के कारण और वर्णना के माध्यम। तो ये है बैकग्राउंड। अच्छा, अब हम अष्टम अध्याय का सेकेंड श्लोक, दूसरा श्लोक का चर्चा करेंगे। शोहं नृणां खुल्ल सुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं जदाह साक्षाद् భగవాన్ ఋషిభ్య అర్థాత్ శ్లోక అనువాద మే శ్రీల ప్రభుపాద జీ కహ రహే అబ్ మే భాగవత్ పురాణ సే ప్రారంభ కర్తా హూ జిసే భగవాన్ నే ప్రత్యక్ష రూప్ సే మహాన్ ఋషియో సే ఉన్ లోగో కీ లాభార్థ కహా థా జిస్కా వర్ణన్ స్వయం భగవాన్ కియే థే జో అత్యల్ప ఆనంద్ కే లియే అత్యధిక కష్ట మే ఫసే హుయే భౌతిక జగత్ కా భౌతిక జగత్ మే జీవో కా స్థితి కైసీ హై థోడా సా సుఖ కే లియే కితనా పరేషానీ హో రహే కితనా కష్ట ఉఠా రహే హై నా దేఖియే కోయి లోగ్ జైసే హమ్ స్టేషన్ మే జబ్ జాతే హై లేతే కూలీ లోగ్ జో హై కితనా భారీ భారీ సమాన్ ఉఠాతే హై కేవల్ కుచ్ కోయి దో చార్ రుపే కే లియే ఔర్ సారా దిన్ భర్ రహేకర్ శాయద్ ఉస్కో దో చార్ కస్టమర్ మిల్తా హై క్యూంకి కితనే సారే యే కూలీ హై కితనా కష్ట ఉఠా రహే ఔర్ కోయి ఆద్మీ జో ఫ్యాక్టరీ మే కూలీ కా కామ్ కర్ రహా హై కితనా భారీ భారీ మాల్ ఉఠానా పడతా హై ఆప్ లోగ్ తో దేఖతే హై సమాన్ లాతే హై కితనా మిల్తా హై ఉన్ లోగో దో చార్ రుపే కే లియే కితనా కష్ట ఉఠా రహా హై తో హమ్ ఐసే కూలీ కే బారే మే సోచతే దేఖో థోడా లాభ థోడా పైసా కమానే కే లియే కితనా కష్ట కర్ రహే హై వైసే హీ ఈశ్వర్ కా దేవతా లోగ్ హమారే బారే మే సోచతే దేఖో థోడా కమానే కే లియే కితనా కఠోర పరిశ్రమ కర్ రహే హై హమారా స్థితి భౌతిక జగత్ మే ఐసా హీ హై సుబహ సే శామ్ తక్ కితనా కష్ట ఉఠా రహా హై పరిశ్రమ కర్ రహా హై క్యూ థోడా సా రూపాయా కమానే కే లియే అసల్ మే రూపాయా కా క్యా జరూరత హై సబ్ తో భగవాన్ దే చుకే హై బల్కి మనుష్య నే జో ఆయోజన్ కియా హై తో ఐసా ఏక్ చక్కర్ మే సబ్కో ఫసా దియా కి అగర్ రూపాయా నహీ కమాయా తో ఖానా నహీ సకెంగే జీనా నహీ సకెంగే జైసా ఆజ్ హమ్ అగర్ దేఖతే హై విచార్ కర్కే దేఖియే ఖానా కహాన్ సే ఖానా కౌన్ భేజ్ రహా హై కిస్కే కృపా సే ఖానా మిల్ రహా హై భగవాన్ కే కృపా సే హమ్ క్యా ఖాతే హై ఫల్ మూల్ సబ్జీ అనాజ్ బదాం దూధ్ హై నా జో మాంస మచ్లీ ఖాతా హై వో భీ ఉస్కా మాంస మచ్లీ ఖాతా హై జో యే అనాజ్ ఘాస్ వగేరా ఖాకర్ అప్నా శరీర్ బనాయా ఔర్ వో ఉస్కా శరీర్ ఖా రహా హై మత్లబ్ అసల్ మే సభీ సభీ కా జీవన్ యే ఇసీ కే ఆధార్ పర్ ఆశ్రిత్ హై కి इसी के आधार पर ही आश्रित हैं कि जैसे फल मूल साग सब्जी अनाज बादाम तो आप देखिए एक फल कहां से मिलता है दुकान से मिलता है कहां से पेड़ से और आप कितना स्वादिष्ट एक एप्पल या एक आम कितना स्वादिष्ट है बल्कि वो जो और कितना सुंदर पैकिंग भी है एकदम परफेक्ट पैकिंग और वो फल हम खाते हैं खाने के पश्चात क्या मिला क्या रह गया बीज रह गया एक आम का बीज रह गया तो वो जब जमीन में गिरता है तो उससे और एक पेड़ निकलता है उस पेड़ में कितने सारे आम हैं हर आम में एक एक आठी है बीज है हर बीज में एक पेड़ है उस पेड़ में हजारों फल हैं उस फल में हजारों बीज हैं तो ऐसा ऐसी सुंदर आयोजन कौन कर सकता है, कौन किया है और कौन कर सकता है? कोई अपना लैबोरेटरी में ऐसा कुछ बना नहीं सके। केवल आम या फल ही नहीं, देखिए अनाज जो हम खाते हैं कहां से आए? पेड़ पौधे से आए, और वो जमीन में गिरता है और एक पेड़ निकल जाता है, उसमें और अनाज निकलता है। ये सारे आयोजन भगवान किए, किसके लिए किए? हमारे लिए। भगवान जितने सप्लाई करते हैं किसी को, कुछ प्रकार का भी अभाव का संभावना नहीं रहता। बल्कि मुश्किल क्या होता है, कब होता है? जब कोई आदमी पूरे वो सारे को जो फसल हुआ है, फलन हुआ है, उसको इकट्ठा करके अपने गोदाम में रख देते हैं, हजारों आदमी का जो खाना था एक आदमी लेके गोदाम में रख दिया, और बाजार में स्केयरसिटी हो गया, खाना नहीं है, तो भाव बढ़ जाता है। वो खरीदा है एक रुपया में, ऐसे भाव बढ़ा के स्केयरसिटी के द्वारा अभाव सृष्टि करके भाव बढ़ा के पांच रुपया करके बिकते हैं सेल का, ये किलो का। ऐसे मनुष्य ने भगवान के जो सृष्टि उसमें हस्तक्षेप करके उसको सत्यानाश कर। भगवान कुछ पैसे का लिए हमें नहीं दिया, भगवान ऐसे मुफ्त में दे। भगवान केवल बोला ठीक है तुम थोड़ा सा जमीन को ये करो, कल्टीवेट करो, और हम बीज दूंगा, बारिश दूंगा, पानी दूंगा, सूरज का किरण दूंगा, चंद्रमा दूंगा, उसके द्वारा ये सारे खाना सबके लिए तैयार करना। पैसा का भगवान बोला नहीं हमको पैसा दो या हमको पूजा करो तभी मैं तुमको दूंगा। हम भगवान को चाहे पूजन करें, भगवान को प्रार्थना करें या ना करें, भगवान हमें सब कुछ ऐसे दे रहे हैं, दे चुके हैं। इतने ही कृपालु हैं भगवान। तो ऐसे भगवान सारे जगत को सृष्टि करने के पश्चात जीव के कल्याण के लिए, विशेष रूप से मनुष्य को कल्याण के लिए शास्त्र ज्ञान, दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान प्रदान किए। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? भगवान के बारे में जो ज्ञान, वो भगवान खुद प्रदान किए, ताकि उनके साथ संपर्क जोड़कर हम उनके पास जा सकें। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या ये होना चाहिए कि सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करके रुपया कमाना, कुछ बुरा मत मानिएगा, बल्कि इनमें से जो बुद्धिमान है वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के पास बिजनेस संभालने के रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर खुद भक्ति के, भगवान को भक्ति के लिए मग्न हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, जैसे राधा चरण को बहुत बुद्धिमान है। जय जान कृष्ण भजे से बड़े चतुर, बहुत चतुर है, क्योंकि उनको पता है कि रुपया कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और आप लोग देख भी रहे हैं ना, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो समय सुधारना। ऐसे एक समय था जब आप सोचते थे जब रुपया कमाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कितना मजा होगा, है ना? और जब रुपया कमाना शुरू किया तब कैसा लगता है? असल में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप फंस गए हैं। आप में से सब बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस ऐसा एक चक्कर है, इसमें आप एक बार फंस जाने से उसे निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जो रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि इन्वेस्ट करके मैं प्रॉफिट बनाऊं, बल्कि इन्वेस्ट करने के पश्चात क्या लगता है कि इन्वेस्ट जो मैं किया हूं इसको मैं कैसे वापस लाऊं। और इसके लिए फिर उसको री इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर ऑर्डर्स लेना पड़ता है, माल खरीदना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। ये करना चाहिए, इसका जरूरत है, बल्कि ये ही जीवन का असल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्यों? चाहे आप माने या ना माने, एक दिन हम सबको मृत्यु के साथ मुलाकात करनी होगी, मृत्यु के सम्मुखीन होना पड़ेगा, मृत्यु के साथ मुकाबला करना होगा। तो उस समय अर्थात क्या करना क्या होगा, हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तब क्या हम एक पैसा भी अपना साथ ले सकेंगे? चाहे अब मेरा बैंक में कितना करोड़ों रुपया हो सकता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात कितने रुपया आप अपने साथ लेंगे, हम कितना रुपया हमारे साथ ले सकेंगे? रुपया, पैसा, यश, विद्या, चाहे कितना बड़े पंडित हम न हो, मृत्यु के समय हमारा डिग्री हम साथ में ले सकेंगे? ऐसे हम देखते हैं भौतिक जगत का कुछ भी हम अपना साथ नहीं ले सकेंगे, ना तो हमारा फैमिली जाएगा, ना तो हमारा प्रॉपर्टीज हमारा साथ जाएगा, ना तो हमारा बैंक बैलेंस, ना तो जो कुछ हम ये किया है, जो ज्ञान अर्जन किए हैं, वो भी हम हमारा साथ नहीं ले सकेंगे। क्या हमारा साथ हम ले सकेंगे? केवल भगवान के लिए जो हम कुछ किए हैं वही केवल हम अपना साथ ले सकते हैं। ये एक तो है पुण्य कर्म और एक है भगवत भक्ति। भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से फायदा ये होता है कि हम अगर भगवान को अब याद करते हैं, हम अब अगर भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं, तो हमारा जब मुसीबत आएगा, हमारा जब कठिनाई आएगी, तब भगवान आकर हमें संभाल। फायदा ये है, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से ये फायदा होता है। अब तो प्रश्न हो सकता है, कोई कोई आदमी ऐसे प्रश्न भी करते हैं, कैसे पता चलेगा कि भगवान है या नहीं? इसका भी जवाब हम सही रूप से दे सकते हैं, केवल एक विचार का प्रयोजन होता है, इसमें थोड़ा विचार करने का प्रयोजन होता है। मैं अगर बोला कि ये टेबल किसी ने बनाया, जवाब क्या मिलेगा? कौन, किसी ने इस टेबल को बनाया? मानेंगे ना, सब मान लिया, किसी ने ना बनाया इसको। मैं अगर बोला नहीं वो आकाश से गिरा है ये टेबल, कोई मानेंगे? कोई अगर बोला कि आकाश से नहीं गिरा, कुछ पानी के साथ कुछ कीचड़ का इकट्ठा होकर एक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके कारण ये टेबल का उत्पत्ति हुआ है सृष्टि, कौन मानेंगे? ये मकान किसी ने बनाया? किसी ने बनाया? चाहे हमको उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, बल्कि ये तो हमारे बुद्धि के द्वारा हम विचार कर सकते हैं कि किसी ने इसको बनाया हो। ये रास्ता जो है बाहर का किसी ने बनाया? हाँ, तो अब अगर हम प्रश्न करते हैं ये पृथ्वी को किसी ने बनाया, मानेंगे ना किसी ने बनाया, चाहे हमको जानते हैं या नहीं जानते हैं, बल्कि ये मानना होगा किसी ने बनाया। ये ग्रह नक्षत्र जो है जो आकाश में दिखाई दे रहा है, किसी ने बनाया? तो सही रूप से हम इसको अगर अन्वेषण करें तब हमको पता चलता है हाँ कौन बनाया। तो जो सारे संसार के बनाया है, जिसने जो सारे सृष्टि को जो परम सृष्टि करने वाला जो है वो है भगवान। और उसकी प्रकाश देखिए कैसे हम उसकी कार्य हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैं बताया था, एक छोटा सा एक बीज जमीन में गिरता है, उससे एक पेड़ निकल जाता है, बहुत सुंदर आवाज आ रहा था। एक और उसमें उसे छोटा सा एक बीज से कितना बड़ा एक पेड़ निकल जाता है। पेड़ में फल होता है, फल में बीज है, उस बीज में पेड़ है, उस पेड़ में फल है, उस फल में बीज है। ऐसी सृष्टि कौन कर सकता है? अगर कोई बोलेगा नहीं कोई किसी ने बनाया नहीं, ये ऐसे ही हो गए हैं, ये क्या क्या बुद्धिमान का विचार है। हम देखते हैं एक्सीडेंट, क्या कोई मनुष्य ने भी, सबसे बुद्धिमान जो वैज्ञानिक है वो भी नहीं बना सकता। आज तक किसी ने ऐसा लेबोरेटरी में ऐसा एक बीज बनाया जिससे एक पेड़ निकला है, और जिस पेड़ में फल था, फल में बीज था, ना क्या कभी वो बनाना सकेंगे। तो ये है सरल विचार। देखिए हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लेते समय हम क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्य अगर चलता रहता था तो वातावरण में ऑक्सीजन रहता था, सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाते। बल्कि अब तक हुआ है क्या? क्यों नहीं हुआ? पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ रहा है। हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन। आप बताइए किसी ने इसका आयोजन किया है? तो वैसे अगर सरल भाव से हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो हमें पता लग चलता है कि हाँ भगवान है, चाहे हमको देख सके या ना सके, इससे कोई उनका, बल्कि हम उसको अनुभव कर सकते। भगवान है, और भगवान के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसका वर्णन, जैसे मैं बता रहा था, श्रीमद् भागवतम में सारे वर्णन हो चुका है, सृष्टि से शुरू करके भगवान का परिचय तक पूर्ण विचार श्रीमद् भागवतम। ओके, अब थोड़ा सा ये इस श्लोक का हम ये कर लेते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर को कह रहे हैं, अब मैं भगवत पुराण से प्रारंभ करता हूं, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्याधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। मतलब भौतिक जगत के बद्ध जीवों के लिए भगवान इस ज्ञान को प्रदान किए। और बद्ध जीव का लक्षण क्या है, वर्णन कैसे हुआ है, डिस्क्रिप्शन कैसे हुआ है? जो थोड़ा सा आनंद के लिए बहुत सारे कष्ट उठाता है वो है बद्ध जीव। इस श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं का समाधान के लिए की गई है और ये शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली हैं केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों की उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण की शरीर आत्मा है अनेक अनेक मिथ्या आसक्तियां से अपने को संबंध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकवादी साज सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। जीवन की ये मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वो भगवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों को संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो ये जो भागवत है श्रीमद् भागवतम किनके पास सुनना चाहिए? जो भागवतम को जानते हैं। मतलब भागवत का उद्देश्य क्या है? भगवान को समझाना। भगवान कौन है? भगवान को परिचय प्रदान करना, ये है भागवत का उद्देश्य। तो इस उद्देश्य कौन सफल कर सकता है? जो भगवान को जानते हैं। जो भगवान को नहीं जानते हैं वो कभी ना तो भगवत समझेगा ना तो दूसरे को समझाना सकेगा। तो इसलिए कहा गया है कि भागवत उनके पास सुनो जो स्वयं भागवत है। मतलब जो सारे भागवत के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, अर्थात भगवान की सेवा में जो अपने आप को पूर्णतया पूर्ण रूप से युक्त कर चुके हैं, उन्हीं के पास केवल भागवत श्रवण करना चाहिए। और सही रूप से हम उनके पास भागवत श्रवण करेंगे तो क्या होगा? ये भौतिक बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा।
महाराज, आपने भी एक लाइन पढ़ी थी कि जो भाग्यशाली होते हैं, और प्रभुपाद जी ने भी अपने शिष्य को कहा था कि मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी बार बार आता है, जब भगवान की लीलाएं आती हैं कि जो भगवान के साथ गोपियां थे वो बहुत पुण्य उन्होंने किए थे अनेक जन्मों तक। और एक तरह हम पढ़ते हैं कि भक्ति अहैतुक ही है, तो जो भाग्यशाली है, जो पुण्यात्माएं हैं, वो उसमें भागवतम में ये भी लाइन है कि जो पुण्यात्मा है वही समझ सकता है भगवान के तत्व को, दूसरा नहीं समझ सकता। तो इसकी क्या भक्ति पुण्यों पर आधारित है?
हाँ, ये जो पुण्य जो है इसे असल में सुकृति कहा जाता है। भक्ति के अनुकूल जो कार्य होता है उसी के द्वारा भक्ति का वृद्धि होता है, उसी के द्वारा भक्ति का उत्पत्ति होता है। जैसे चाहे देखो, कोई आदमी बहुत बड़े पंडित हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बल्कि भागवत को समझ नहीं पाते। मतलब क्यों? क्योंकि वो भगवान को विश्वास नहीं करते। तो भगवान के प्रति जो विश्वास, भगवान के भक्तों के वाणी के प्रति जो विश्वास, ये विश्वास ही है पहला सुकृत। और ये रहने से भगवान की वाणी हम आसानी से समझ सकते हैं और भगवान को कृपा हम बहुत सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। ये है सौभाग्य, ये भौतिक सौभाग्य नहीं, ये आध्यात्मिक सौभाग्य जिसे सुकृति कहा जाता है।
हम भौतिक जीव हैं, भौतिक जीव हैं।
हाँ हाँ बताइए। हम मैं
सुन, तो हमें भौतिक जीवों के साथ रह के भक्ति करनी है। और जब हम सत्कार्य में आते हैं तो हमें कई बार ऐसे कहा जाता है कि घर पे रह के भी भक्ति कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं
कि आपके अंदर परमात्मा है, वही भगवान है, तो उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन करें? क्योंकि
भक्ति के जगत में रह के भक्ति करने के लिए एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी है।
हाँ ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, हम सुन सकते। हरे कृष्णा। देखो, परमात्मा के रूप में तो भगवान विराजमान है हृदय के, हरे कृष्णा। ठीक है, पहले ठीक है, ओके, स्वीट स्वीट स्विच इट ऑफ।
ध्यान सुनिए आप लोग।
यद्यपि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, पर उनको हम देख नहीं सकते हैं, है ना? उनके बात, उनके वाणी हम सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको समझने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए भक्तों के प्रयोजन होता है, क्योंकि ये जो भक्त लोग हैं वो भी भगवान का ही प्रकाश है, उन्हीं का कृपा का प्रकाश है। उनको भक्तों को भगवान भेजे हैं ताकि हम उनको समझ सके, उनको पहचान सके। और एक रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, वो है भगवान विग्रह के रूप में। मंदिर में जब हम जाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, वो कौन है? हमारा हृदय में जो भगवान विराजमान है उन्हीं का प्रकाश। तो वैसे दो रूप से भगवान, टू मच इको, वॉल्यूम इज टू हाई, इट्स फाइन। तो इसलिए साधु संघ का प्रयोजन बहुत ही जरूरी है। साधुओं का मतलब भक्त का संग करना, क्योंकि सतांग प्रसंगान मामो वीर्य संविदो। साधुओं का संगत से ही भगवान का प्रकाश होता है, इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे बोल।
हरे कृष्णा गुरुवार, जैसे आपने भी बताया कि ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे, और पृथ्वी को मृत्यु लोग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होती है। तो जो बाकी के जो लोग हैं उसमें बर्थ और डेथ का क्या सिस्टम है?
हाँ, ये जो है मृत्यु होता है, बल्कि स्वर्गलोक में ऊपर का जो है ना वहां मृत्यु नहीं होता है।
गुरु महाराज जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का भी एक निश्चित टाइम होता है
okay.
और जो सर्वोच्च लोक है वो तो सप्तलोक है
हाँ.
और वो ब्रह्मा जी का लोक है
हाँ.
तो
हाँ, वहां मृत्यु होता है जब ब्रह्मा जी का आयु खत्म हो जाता है
हाँ? जो उससे पहले वाले हैं वो तपोलोक
वैसे तप वहां भी होता है। महर्षियों के ये स्थिति और देवताओं का स्थिति ब्रह्मा जी के साथ ही साथ रहता है। जब तक ब्रह्मा जी रहते हैं तब तक वो लोग रहते हैं और जब ब्रह्मा जी का जब आयु खत्म हो जाता है ब्रह्मा जी भी ये भौतिक जगत छोड़कर चले जाते हैं तब ये ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। बल्कि यहां जो है हम अपने कर्म के अनुसार देह का परिवर्तन होता रहता है भौतिक जगत। असल में भौतिक जगत में सारा भौतिक जगत ही अनित्य है नाशवान है। किसी का जीवन बहुत दीर्घस्थायी होता है बहुत समय के लिए उनका आयु होता है और किसी को कम होता है। बल्कि मरना सबको ही होगा ब्रह्मा जी को मृत्यु अवश्य भावी।
थैंक यू गुरु।
हरे कृष्ण।
गुरु महाराज इज सेड दैट बलि महाराज इज कमिंग एज नेक्स्ट इंद्र बट वी रीड इन भागवतम दैट भक्तास गो बैक टू गॉड हैड सो बलि महाराज इज यू नो ही इज प्रेजेंटिंग आत्मनिवेदनम सो हाउ ही इज कमिंग एज इंद्र।
ओके इसी भक्त गोज बैक टू गॉड हैड but at the same time bhakta doesn't care when he'll go back to God. His mentality is mama janmani janmanishware bhavatad bhakti rahituki tvai that let me serve you life after life. So when krishna will want he will take us but until then let me just serve him. And serving him is non-different from going back to him, isn't it? Like that, if we ask, okay, going back to Godhead, what will you do? So you're serving here. What you are doing here, you'll do the same thing there.
But still, you want to go back to Godhead.
You're already back to Godhead. When you're serving Krishna. You are already gone back to God. That is already spiritual, isn't it? Like, I'll give you an example. The American government sends a representative in a very poor, poverty-stricken country, say Ghana. Now, when he goes to Ghana, this American ambassador, does he live like an ordinary Ghana people? How does he live?
American.
Like an American. Because he is serving the American government. American government makes the best possible arrangement for him. Even in the very poor country. So similarly, when one serves Krishna, Krishna makes the most wonderful arrangements for him. That's why he doesn't care whether I'm here or there. I'm serving Krishna. So I am there all the time. Yes, Radhachand Prabhu.
On that basis, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे कहते हैं कभी कभी कि जो देवताओं की स्थिति है कोई व्यक्ति पुण्यात्मा हो या भक्ति के पुण्य से नष्ट होकर क्षीण होकर पुण्य भाग गया हो या कभी कोई भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का पद या अन्य का पद देते हैं इसका तो यही हुआ कि भगवान कभी कभी शुद्ध भक्त को उस पद पर आसीन करते हैं।
हाँ जरूर जरूर। बल्कि देवताओं ने शुद्ध भक्ति देवताओं में कम होता है क्यों
बल्कि तो प्रसन्न है इसमें
हाँ
इसमें ऐसा
अच्छा हाँ
कभी भगवान किसी शुद्ध भक्त को अगर कोई ऐसा जीव नहीं है योग्य जीव नहीं है तो उसको इस पद के ऊपर आसीन करते
इसका हाँ वेरी गुड। इसका कारण ये होता है कि भक्त का मन में अगर कोई वासना रह जाता है तो भगवान पूरा कर देते हैं। बलि महाराज इंद्र बनना चाहता था इंद्र का पद प्राप्त होने चाहा तो भगवान बोला ठीक है तुम जब चाह तो मिल जाएगा तो तो बलि महाराज बोलेंगे कि आप जरूरत नहीं है, मुझे जैसे ध्रुव महाराज अपना दादा से भी आगे बढ़कर कोई स्थान उनको प्राप्त होने का अभिलाषी थे। भगवान बोला ठीक है। तब ध्रुव महाराज बोला देखिए मैं तो टूटा हुआ कांच ढूंढ रहा था, मैं तो आपको हीरा मिल गए हैं, तो कांच के लिए मैं क्यों आकांक्षी होंगे। तो भगवान बोला नहीं, जब तुम्हारा दिल में ये वासना जो था इसका पूरा कर। तो ऐसे ही बलि महाराज का भी, क्योंकि उनका दिल में इंद्र बनने का अभिलाष था, भगवान बोला ठीक है इस बार तो मैं इसको इंद्र बना चुका हूं, ये मेरा अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट पूरा होने दो, नेक्स्ट शिफ्ट में तुम इंद्र बन के आओगे। तो ऐसे भगवान कभी कभी अपने शुद्ध भक्त की भी भौतिक मन कामना पूर्ण करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण।